नमस्कार, बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान की शुरुआत प्रश्नों से होती है। प्रश्न नहीं होता तो उत्तर भी नहीं होता, और उत्तर नहीं होता तो कोई ज्ञान नहीं होता। प्रश्न होना आवश्यक है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठता है, सुखी है, संपन्न है, कुछ तरह की कोई समस्या नहीं है जीवन में, तो आपको कोई भी आध्यात्मिक मार्ग अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रश्न अपने आप आएगा और आप अपने आप किसी आध्यात्म मार्ग की ओर अपने आप को झुका हुआ पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप ज्ञान मार्ग की ओर ही जाएं। हो सकता है कि किसी और मार्ग में आपकी रुचि हो, लेकिन सभी के लिए कोई ना कोई प्रश्न आवश्यक है। प्रश्न छोटे मोटे प्रश्नों से शुरू होता है, लेकिन जो मूलभूत प्रश्न है वो आपके मन में होने चाहिए। नहीं तो आपको किसी गुरु के किसी तरह के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है जीवन में, तब तक कोई इस ओर देखता भी नहीं है। तो या तो दुख या फिर जिज्ञासा, ये प्रश्नों का कारण होते हैं। या तो व्यक्ति बहुत दुखी है, उसके जीवन में समाधान नहीं है, कोई सुख नहीं है, या सुख आते जाते रहते हैं, तो वो प्रश्न अपने आप आते हैं कि ऐसा क्यों है, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, और अपने आप मूलभूत प्रश्नों की ओर वो ले जाते हैं कि वो जीवन है क्या, फिर जो जीवित है वो क्या है, जो जीव है वो क्या है, यानी कि मैं क्या हूँ, सारा अनुभव क्या है, संसार का अनुभव संसार क्या है। तो दुख बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कारण है किसी भी व्यक्ति को प्रश्न करने के लिए। एक बार प्रश्न आ जाता है मन में तो उत्तर ढूंढना शुरू करता है आदमी। और उत्तर कहाँ मिलेगा, या तो किताबों में ढूंढते हैं लोग, या फिर गुरु के पास जाते हैं, किसी बड़े मास्टर के पास जाते हैं, और इस तरह से उनकी यात्रा शुरू होती है। या फिर आप बहुत सुखी हैं लेकिन संतुष्टि नहीं है जीवन में, और इसलिए आप जानना चाहते हैं कोई बात। आपको कोई शारीरिक दुख नहीं है और मानसिक भी दुख नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। आप धन संपत्ति और जो पुरुषार्थ, जो चार तरह के पुरुषार्थ हैं, वो आपका लक्ष्य नहीं रहा अभी, वो लक्ष्य पूरा हो चुका है आपका। आप जानते ही होंगे जो चार तरह के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष छोड़ के बाकी सब हो जाता है ज़्यादातर, लेकिन जब मोक्ष की बात आती है तो जिज्ञासा आती है मन में कि ये कैसे मोक्ष मिले, क्यों इसको पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ यानी हमारे जीवन का लक्ष्य। यदि जिज्ञासा है तो प्रश्न होंगे, और फिर व्यक्ति अपनी रुचि से, किसी दबाव से नहीं, किसी दुख से नहीं, सिर्फ अपनी रुचि की वजह से उन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करता है और ज्ञान मार्ग की तरफ अग्रसर होता है, या किसी और मार्ग की तरफ। बहुत से मार्ग हैं उत्तर जानने के, सिर्फ ज्ञान मार्ग ही नहीं है। ज्ञान मार्ग सर्वोपरि है, वो हमने देख लिया, क्योंकि यदि प्रश्न नहीं तो फिर कोई भी मार्ग संभव नहीं होता। संसार में लिप्त रहता है आदमी, कुछ करता नहीं है, और ये चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है, जीवन का जो चक्र है वो घूमता रहता है। तो जब तक दुख नहीं होता, जब तक जिज्ञासा नहीं होती, जब तक रुचि नहीं होती, तब तक प्रश्न नहीं होता। प्रश्न नहीं होता तो आपकी प्रगति नहीं होती। प्रश्न ज्ञान मार्ग के लिए आवश्यक है, ज्ञान की दीक्षा के लिए आवश्यक है, नहीं तो आप कहीं नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं आएंगे, कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे भी तो सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ेंगे। आपकी हर बात, आपका हर कर्म जो है वो मनोरंजन के लिए होगा, और ज़्यादा भोग के लिए होगा। तो आप योग मार्ग में नहीं आएंगे, आप भोग पर ही रहेंगे यदि प्रश्न नहीं है तो। इस तरह से ज्ञान मार्ग की शुरुआत होती है। हमने देखा है सर्वोपरि है, क्योंकि अंत में आपको प्रश्नों का उत्तर ही चाहिए रहता है। आपको कुछ बनना नहीं रहता, जो कुछ है वो आप अभी से हैं, आप कुछ और नहीं बनेंगे। सिर्फ ये जो अज्ञान की जो परतें हैं, जो धूल जम गई है अज्ञान की, और आप समझने लगे हैं कि ये जीवन कुछ और ही है, ये संसार कुछ और ही है, और आप कुछ और ही हैं, ये सब, ये धूल जब साफ होती है तो आपका जो स्वरूप है, खुद का रूप, वो दिखाई दे जाता है, वो समझ में आ जाता है। ये ज्ञान मार्ग में बहुत आसानी से संभव है जो बाकी मार्गों की अपेक्षा। प्रश्नों के कितने प्रकार हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रश्न से ही शुरू होता है ज्ञान मार्ग, कोई भी कारण हो उन प्रश्नों का। लेकिन वो जो मूल प्रश्न है वो 5 तरह के होते हैं, तो क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। मेरे हिसाब से 2 और तरीके के प्रश्न और हो सकते हैं, वो है कौन और कितना। तो मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं, आपको आपको मालूम ही होगा। आपको ये नहीं कभी बताया होगा कि जब आप ये प्रश्न करते हैं, ये 7 तरह के हो गए अभी, तो उसका उत्तर किस हिसाब से होना चाहिए, आपके आप किस तरह के उत्तर की अपेक्षा रख सकते हैं। जब हम क्या कहते हैं, जब हम क्या पूछते हैं, तो उसका उत्तर हमेशा कुछ मूलभूत जानकारी होता है जो आपके अनुभव में होना चाहिए। यदि आपको पहले से अनुभव है किसी चीज़ का, उस प्रश्न का उत्तर, उस क्या प्रश्न का उत्तर उस अनुभव के आधार पर होना चाहिए। यदि वो उत्तर ऐसा आता है जो कि आपके अनुभव में नहीं है, तो वो प्रश्न आप फिर से दोहराएंगे। तो क्या प्रश्न का उत्तर हमेशा पिछले अनुभव की ओर इशारा करता है, जिससे कि आपको नया अनुभव हो सके, नया ज्ञान हो सके। कहाँ, कहाँ बहुत आसान है, क्या थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैंने आपको बताया। कहाँ हमेशा एक जगह की ओर इशारा करेगा, आपको जगह मिलनी चाहिए, आपको उस जगह की मात्रा मिलनी चाहिए, देश इसको कहते हैं। तो कितने मीटर दूर, कितने फीट दूर और कहाँ पर स्थित, किस दिशा में, ये सारे उत्तर कहाँ प्रश्न आपको देगा। यदि नहीं देता है ये उत्तर, तो फिर आप मान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो उत्तर गलत है। मैं यदि पूछता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, स्वाभाविक है कि आप कुछ जगह का नाम बताएंगे मुझे। यदि मैं आपको कहता हूँ कि आपका चित्त कहाँ है, तो यदि आपने इशारा करने की कोशिश की या आपने किसी जगह का नाम बताने की कोशिश की, तो आप देखेंगे कि आप असफल रहेंगे। तो इसका मतलब वो उत्तर सही नहीं है जो आपने दिया। तो यदि मैं कहता हूँ कि चित्त मेरे सिर में है कहीं, आपका भी अनुभव नहीं है, मेरा भी अनुभव नहीं है, इसका मतलब वो उत्तर गलत है। तो आध्यात्म में ऐसा बहुत बार होता है कि लोग कुछ भी मान बैठते हैं, तरह तरह की मान्यताएं हैं, और ये सारे तरीके के प्रश्न पूछने से वो मान्यताएं नष्ट हो जाती हैं, वो हट जाती है, वो साफ हो जाती है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन में बता रहा हूँ कि किस प्रश्न का क्या उत्तर अपेक्षित होना चाहिए। तो कब जो प्रश्न आप पूछते हैं, उसमें समय की ओर इशारा किया जाता है, कोई तारीख बताई जाती है, घड़ी की तरफ इशारा किया जाता है, कुछ अंक बताए जाते हैं कि कैलेंडर की तरफ इशारा किया जाता है। तो यदि मैं पूछता हूँ कि आप इस नौकरी में या आपके काम में, बिजनेस में कब से हैं, तो आप मुझे एक तारीख बताएंगे, स्वाभाविक है। या आप, मैं पूछता हूँ कि आप यहाँ कब आए, तो आप मुझे एक समय बताएंगे, घड़ी का, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं जब आपसे पूछता हूँ कि आपका जन्म कब हुआ, और यदि आप मुझे जन्म तिथि बताएंगे आपकी, और कुंडली बताएंगे, जन्म कुंडली और समय बताएंगे जन्म का, तो आप देखेंगे कि उसका कोई अनुभव नहीं है आपके पास, उसका कोई अनुभव नहीं है। शरीर का जन्म कब हुआ वो आपके माँ बाप बता पाएंगे, लेकिन आपका जन्म कब हुआ उसके लिए कोई तिथि, कोई समय आप नहीं बता पाएंगे। तो आप जान जाएंगे तुरंत उत्तर है सही नहीं है, वो सत्य नहीं है। मान्यता बहुत लोगों की रहती है कि यदि सभी लोग एक तरह का उत्तर दे रहे हैं, तो मुझे भी वैसा का वैसा ही उत्तर देना है, और हमेशा वो अज्ञान में रहते हैं। क्यों, जब मैं पूछता हूँ तो आपको एक उसका कारण बताना है। यदि आपने बता दिया कि बस ऐसा ही होता है, तो वो सही उत्तर नहीं होगा। जब मैं पूछता हूँ कैसे, तो मैं एक किसी प्रक्रिया की ओर इशारा कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रक्रिया चाहिए, कुछ जो मेरे अनुभव से मिलती जुलती हो, या मैं समझ सकूं, पिछले किसी अनुभव से समझ सकूं, कम से कम अनुमान लगा सकूं। तो कैसे भी किसी अनुभव की ओर इशारा करता है कि पिछली जो आपकी समझ है, पिछला जो आपका अनुभव है, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो यदि मैं पूछता हूं कि आपको कोई अनुभूति कैसे हो रही है, तो आपके पास कोई अनुभव नहीं होगा। ये सब आप जान सकते हैं यदि मैं पूछता हूँ कि आपका कंप्यूटर कैसे काम करता है, आपकी कार कैसे काम करती है, तो आपके पास बड़ा अच्छा जवाब होगा कि ये ऐसा होता है और बिजली यहाँ जाती है और पेट्रोल यहाँ डालना पड़ता है और ऐसा वैसा आप पूरा उसका विज्ञान बता सकते हैं। लेकिन जो मूलभूत प्रश्न है उसमें जैसे ही मैं पूछूं कुछ कि आपको अनुभूति कैसे होती है, चित्त की जो स्थिति बदलती है वो कैसे बदलती है, आपके पास कोई अनुभव नहीं रहेगा ये बताने के लिए। कौन जब मैं पूछता हूँ तो वो किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता है। यदि मैं पूछूं कि खाना किसने बनाया है तो आप इशारा कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी माँ ने बनाया है या बीवी ने बनाया है, किसी ने बनाया है, तो वो बिल्कुल सही उत्तर होगा क्योंकि किसी व्यक्ति की ओर इशारा किया आपने तो बिल्कुल सही होगा। यदि मैं पूछता हूँ कि ये संसार किसने बनाया है और आप बताना चाहेंगे मुझे किसी की ओर इशारा करके, तो वो उत्तर हमेशा गलत आएगा क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं आपको मिलेगा कहीं, ना मुझे दिखेगा ना आपको दिखेगा। बहुत लोग ये मान के सिर्फ बैठ जाते हैं कि हाँ क्योंकि किसी ने कह दिया है ये कि यहाँ इसने बनाया है तो बस वही होगा उत्तर, लेकिन आपके अनुभव में कभी नहीं होगा वो। ध्यान रखिए कौन प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, बहुत सी मान्यताएं रहती है जो बचपन से हमारे दिमाग में बिठा दी जाती है कि कौन पूछे तो ये उत्तर है और अब इसके आगे मत पूछना क्योंकि यदि आप पूछोगे तो आप मूर्ख हो, सबको मालूम है संसार किसने बनाया है। यदि मैं पूछता हूँ कितना तो कुछ मात्रा अपेक्षित है, कुछ संख्या अपेक्षित है। तो यदि मैं पूछूं कि आपके घर में कितने लोग हैं तो आप एक संख्या बताएंगे जो कि बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। यदि मैं पूछूं कि चैतन्य कितने हैं या आत्मन कितने हैं तो आप देखेंगे कि इसका कोई उत्तर नहीं है क्योंकि लोग काफ़ी लोग मान बैठे हैं कि जितने लोग उतने उतनी चेतना, उतने चित्त, उतने आत्माएं हैं, लेकिन किसी का अनुभव नहीं है ये। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये मूल प्रश्न करेंगे आपका अज्ञान धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगा। यदि आप प्रश्न नहीं करते हैं तो आपका ज्ञान वैसा का वैसा ही रहेगा और बढ़ता जाएगा क्योंकि जितना आप इधर उधर पढ़ेंगे, लोगों से सुनेंगे, टीवी देखेंगे, वीडियो देखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, उतना वो अज्ञान बढ़ता जाएगा। प्रश्न करेंगे तो वो टूटता जाएगा और सत्य की तरफ जो मार्ग जाता है वो प्रश्नों की सहायता से ही जाता है। और जितना ज़्यादा ज्ञान आपका नष्ट होगा उतना ज़्यादा आप सत्य के करीब पहुँचेंगे। अब इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि आपको उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इतना आवश्यक नहीं है, प्रश्न करना आवश्यक है। उत्तर जब आना है तब आएगा। हो सकता है कि बिल्कुल गलत उत्तर मिले आपको कभी कभी और वो बहुत अच्छा भी लगे, आपको पसंद भी आए, लेकिन सिर्फ उसी को उत्तर मान के बैठ जाना ठीक नहीं है। तो प्रश्न के उत्तर जब मिलते हैं तो उन उत्तरों को भी प्रश्न कीजिए। ये चाबी मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहला उत्तर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे ही उत्तर मिलता है उस पर भी आपको प्रश्न करना है। तो आप किसी गुरु के पास जाएंगे अपने आध्यात्मिक प्रश्न लेके और गुरु जो बोलेगा वो उत्तर नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही आपको एक उत्तर मिलता है अगले दिन नया प्रश्न खड़ा होता है और अगले दिन आपको नया उत्तर मिलेगा। ज्ञान मार्ग की खासियत है और कोई भी उत्तर सही नहीं होगा, ये जरा ध्यान रखिए इस बात का। बस अभी आपको जैसे जैसे अनुभव होगा ज्ञान मार्ग पर आपको पता चलेगा कि ये बात क्यों सच है। सत्य कुछ भी नहीं है बस, लेकिन एक मार्ग है जो आपको सत्य की ओर ले जाएगा हमेशा, लेकिन आपको सत्य मिलेगा नहीं उस पर। मैं आपको पिछले उसमें बता चुका हूँ कि सत्य असत्य के पीछे पढ़ना बुद्धिमानी नहीं है, अनुभव के पीछे जाइए आप, अनुभव लेने की कोशिश कीजिए आपका स्वयं का। तो प्रत्यक्ष या अनुमान ये दो बातें और गुरु ये पुस्तक ये अतिरिक्त प्रमाण है ज्ञान के, अनुभव के। तो ये तो हो गए प्रश्न के प्रकार, आपको उनसे क्या उत्तर अपेक्षित होगा, क्या सही उत्तर होना चाहिए, किस तरह का उत्तर होना चाहिए वो अभी आपको पता चल गया। और आप ध्यान से देखेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर आपके अनुभव की ओर ही इशारा करेगा, अनुभव की ओर ही जाएगा, या पिछला अनुभव या अभी वर्तमान अनुभव या आने वाला अनुभव, कैसा भी अनुभव हो ये दो चीज़ों की ओर ही ले जाएगा आपको, प्रत्यक्ष या अनुमान, इन दो प्रमाणों की ओर ले जाएगा जो कि अनुभव से ही आते हैं। तो उत्तरों का मूल्यांकन आप कैसे करें, बहुत आसान है बताना अनुभव के आधार पर यदि आपका अनुभव नहीं है तो अनुभव ढूंढ के लाइए, ये ज्ञान मार्ग है। इसको मार्ग कहा गया है क्योंकि आपको चलना पड़ता है इस पे, आपको कुछ प्रयास करना पड़ता है प्रश्न के उत्तर पाने का। कुछ प्रश्न आपको वहीं के वहीं मिल जाएंगे क्योंकि अनुभव तो यही है, जो भी है, जो भी अस्तित्व है वो यहाँ है अभी इसी वक्त, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है, जो अधिकतर माया से संबंधित है, माया कैसे कार्य करती है, उसके प्रक्रिया क्या है, उससे चित्त वगैरह से संबंधित है, तो उनके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि उनके अनुभव भविष्य में होंगे, अभी नहीं। ये तो प्रश्नों का मूल हो गया, तत्व हो गया कि यदि आपके मन में प्रश्न है तो ज्ञान मार्ग पर आपका स्वागत है, प्रश्न नहीं है तो अपना जीवन का आनंद उठाएं। कोई आपको आवश्यकता नहीं है कुछ प्रश्न करने की, जब तक आनंद है, समृद्धि है, सुख है, सब कुछ है, आपके पुरुषार्थ पूरे हो चुके हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। दुख है, कठिनाई है और जिज्ञासा है और अशांति है आपके मन में, जिज्ञासा भी एक तरह की अशांति ही होती है लेकिन इतनी दुखदायी नहीं होती, तो उसमें आनंद होता है प्रश्न के उत्तर जब मिलते हैं तो काफ़ी आनंद और शांति भी मिलती है। तो यदि अशांति है मन में तो प्रश्न होंगे और तब आप ज्ञान मार्गी बन पाएंगे, नहीं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ समय नष्ट करना है ज्ञान मार्ग पर आना, यदि आप सुखी हैं तो। ये आपको कोई गुरु नहीं बताएगा, ये आपको कोई पुस्तक नहीं बताएगी। ज्ञान मार्ग पर जो आना चाहते हैं, जो साधक हैं, जो अन्वेषक है, खोजना या साधना, ये जो है ज्ञान मार्ग के लक्षण होते हैं। हमेशा ज्ञान के पीछे पड़ा रहता है बिना रुके, ये ज्ञान मार्ग जीवन शैली है, ये आप हफ्ते में 2 घंटे बैठ के करने वाली चीज़ नहीं है, ये आपकी नौकरी नहीं है जो आप पैसे के लिए करते हैं, क्या कहते हैं, शौक नहीं है जो आप मनोरंजन के लिए करते हैं या समय काटने के लिए करते हैं। ज्ञान मार्ग आपका जीवन होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान मार्ग ही नहीं है, वो छोटा मोटा शौक मान लीजिए, छोटी मोटी रुचि, जिज्ञासा, इधर उधर से आपने पता कर लिया कुछ और आप पहले दूसरे उत्तर जब मिल जाते हैं प्रश्नों के, किसी किताब में मिल जाते हैं, आप बस वहाँ रुक जाते हैं, तो ये ज्ञान मार्ग ही होने के लक्षण नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान में रुचि होने के लक्षण। आप जानते होंगे ज्ञान जो है स्कूलों में या कॉलेजों में नहीं मिलता, वहाँ पे सिर्फ आपको सूचनाएं मिलती हैं कि ऐसा करो वैसा करो और ये लिख के आओ, आपकी परीक्षा में पास हो गए तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिली तो पैसे मिलेंगे और पैसे मिले तो आपका जीवन चलेगा। वो उत्तर जीविता के लिए उपयोगी है स्कूल की शिक्षा, ज्ञान के लिए नहीं, कुछ ज्ञान नहीं मिलता वहाँ। कुछ मिलता है वैसे देखा जाए तो भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान, छोटा मोटा ज्ञान, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान या फिर जो मूल ज्ञान है जो कि अति आवश्यक है मनुष्य के लिए, वो सब नहीं मिलता। ज्ञान मार्गी का यही लक्षण होता है कि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, सबके उत्तर मिले, ये लक्ष्य होता है। उसके लिए आपको पूरा जीवन लग जाता है, कई जीवन कभी कभी लग जाते हैं, निर्भर करता है कि अज्ञान कितना है, उस चित्त की रचना कैसी है, उस पर निर्भर करता है। तो इन बातों की तरफ हम जाएंगे, कितना अज्ञान है वो बताएगा आपको कि कितना लंबा चलेगा आपका ज्ञान मार्ग, कितनी लंबी साधना आपको करनी पड़ेगी, या फिर बहुत ज़्यादा अज्ञान है तो आपके लिए ज्ञान मार्ग उपयुक्त नहीं है, कोई और मार्ग लीजिए, भक्ति मार्ग है ऐसा कुछ, नहीं तो यहाँ समय नष्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान मार्ग के कुछ लक्षण होने चाहिए, कुछ विशेष तरीके के लोग ही ज्ञान मार्ग के लिए उपयुक्त हैं, उनके लिए ये उपयोगी है ज्ञान मार्ग। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ मेरे अनुभव के हिसाब से क्या उपयोगी रहता है, किस तरह का व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर आ सकता है। ये ऐसा कोई नियम नहीं है या ये प्रकृति का नियम नहीं है, सुविधा वाली बात है कि यदि आप में वो चीज़ें नहीं हैं, ये वो गुण नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपका समय नष्ट होगा ज्ञान मार्ग पर, हमें कुछ और करना चाहिए अपने जीवन के साथ। ज्ञान मार्ग पर आएंगे वो लोग जिनमें ये गुण नहीं है या जो इन गुणों को विकसित नहीं करना चाहते, उनको ये बड़ा काम लगता है, कठिन लगता है, तो मत आइए यहाँ पर। तो शायद मैं ही हूँ जो आपको ऐसा कहूँगा कि मत आना यहाँ पर, बाकी आपको कोई नहीं कहेगा, बाकी आपको बढ़ावा देंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन मैं जो है समय बचाना चाहता हूँ आपका। तो यदि ये गुण नहीं है या आपकी रुचि नहीं है विकसित करने का, आप में कुछ ऊर्जा नहीं है आप में, तो यहाँ ज्ञान मार्ग में समय नष्ट होने वाला है, ये कठिन मार्ग है, ये भले ही हम इसे सीधा मार्ग कहें लेकिन काफ़ी कठिन है। शास्त्रों में जो लिखे हैं लक्षण ज्ञान मार्गी के, साधक के, वो तो आपको पता ही होंगे, वो है चार तरह के लक्षण बताए गए हैं, मुमुक्षुत्व, वैराग्य, विवेक और षट संपत्ति। ये चार आपको मालूम ही होंगे, जो भी भारत में पैदा हुआ है उसको ये बातें मालूम होनी चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता आजकल के ज़माने में मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने खोजबीन की तो पता चला। मुमुक्षुत्व का अर्थ होता है कि मुक्ति की प्रचंड इच्छा, जिसको सिर्फ मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो ये सबसे बड़ा गुण होना चाहिए किसी भी ज्ञान मार्गी के लिए। यदि ये इच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप किसी किताब को नहीं खोलेंगे, आप किसी सत्संग में नहीं जाएंगे, आप पूरी तरह से राग द्वेष वाला जो संसार है उसमें लिप्त रहेंगे, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि अध्यात्म नाम की कोई चीज़ भी होती है। 90% लोग ऐसे ही हैं, आप देखेंगे बाहर इस दुनिया में क्या है। मुमुक्षुत्व कि कोई उनमें का गुण नहीं है, उनमें मुक्ति नहीं चाहिए उनको, उनको अज्ञान इतना है कि उनको ये भी उसका भी ज्ञान नहीं कि मुक्ति नाम की कोई चीज़ होती है। दूसरा है वैराग्य, आपको जो सांसारिक गतिविधियों में रुचि नहीं होनी चाहिए, खाना पीना ऐशो आराम और ये वस्तु ये रिश्ता वो रिश्ता ये बंधन वो बंधन, ये जो भोग की चीज़ें हैं उनसे आपका मन पहले से भर गया होना चाहिए, नहीं तो आप ज्ञान मार्ग पर बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी। तो राग ही दुख का कारण है, तो अटैचमेंट, तो यदि आपके मन में अभी तक आ सकती है तरह तरह की चीज़ों के लिए तो ज्ञान मार्ग पर असफलता ही मिलेगी, समय नष्ट होगा। तो आप जो भोग रहे हैं वो भोगिए, आप जब तक सही चल रहा है तब तक चलेगा, एक दिन वो दुख का कारण बनेगा और तब आप उसके लिए ज्ञान मार्ग आपके लिए उपयोगी होगा, अभी नहीं, अभी आपका मन उन चीज़ों की तरफ भाग रहा है जो भोग विलास की वस्तुएं हैं, तो आपको इसमें कभी रुचि नहीं आएगी, किसे क्या करना है, मैं क्या हूँ, जब तक मुझे सब कुछ मिल रहा है तब तक अच्छा है। विवेक, ये तीसरा लक्षण है, विवेक का अर्थ होता है सही गलत में भेद जानना, सत्य असत्य में भेद जानना, विवेक जो है वो विकसित किया जा सकता है, मुमुक्षुत्व वैराग्य वो विकसित नहीं किया जा सकता, अपने आप होता है। और चौथा है षट संपत्ति, षट मतलब छह तरह की संपत्ति, शम दम श्रद्धा समाधान उपरति तितिक्षा, इसके अलावा जो तीन के अलावा ये छह और हैं तो नौ हो गए। शम वो है, या कुछ लोग सम भी कहते हैं इसको, इसका अर्थ है कि मन में स्थित आंतरिक शत्रु जो आपके हैं, जैसे काम क्रोध मोह लोभ, इन इन सब का नाश हो चुका है, मन में शांति है आपके, वो किसी से लेना देना नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से प्रेम भी नहीं है, किसी से आसक्ति भी नहीं है, और आपको जो चाहिए वो आपके पास सब कुछ है पहले से, आपको कोई लालच भी नहीं है, आप कहीं भागते दौड़ते नहीं है, तो मन शांत है, ये एक गुण है ज्ञान मार्गी का। यदि ये नहीं है तो फिर बहुत कठिन हो जाता है ज्ञान मार्ग पर चलना, आप इन्हीं चीज़ों के पीछे भागेंगे, इसको आप प्राथमिकता देंगे, जो आपके पास नहीं है, जो आपको लड़ाई झगड़े करने हैं और ये सब लोगों से आपको वसूलने हैं चीज़ें, इंसान जो है उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है, उसमें शम नहीं होता। दम यानी कि आपकी इंद्रियां जो जिन चीज़ों की तरफ आपको ले जाती हैं, आपको विचलित करती हैं, उन पे आपका नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, आपके वचनों पर नियंत्रण, भाषा पर नियंत्रण और कर्मों पर नियंत्रण, दम यानी कि दमन करना, आवेग आते होंगे उनका दमन करना आवश्यक है, नहीं तो उन्हीं के पीछे आप भागेंगे, वही आपका समय ले लेंगे सारा। और तीसरा है श्रद्धा, जो गुरु वचन है या शास्त्रों में लिखी बातें हैं उनमें उनको सत्य मानना, उनका सत्य जानने का प्रयास करना। तो श्रद्धा, बहुत लोग सोचते हैं कि बिना सोचे समझे मानना श्रद्धा होता है, लेकिन वो श्रद्धा नहीं होता, वो अंधश्रद्धा होता है, या जैसे अंधविश्वास होता है, अंध अविश्वास भी कर सकता है, यानी कि बिना सोचे समझे वो उन बातों को नकारना, ठुकरा देना, वो जो शिक्षाएं हैं गुरु की या शास्त्रों की। तो श्रद्धा का अर्थ यह है कि आपको कम से कम इतना करना होगा कि उनको पढ़ के या सुन के उसकी खोज करनी होगी कि वो सत्य है या नहीं। कम से कम इतनी श्रद्धा आप में होनी चाहिए कि आप किसी के पास जाएं या कोई किताब खोलें, पढ़ना शुरू करें, इतना विश्वास कम से कम होना चाहिए। वो सत्य है या नहीं वो बाद में आता है, लेकिन कम से कम इतना आपको मानना पड़ेगा कि हाँ कुछ चीज़ें जो है, कुछ उत्तर मेरे प्रश्नों के किसी गुरु के पास या किसी पुस्तक में जो गुरु ने लिखी है वहाँ मिलेगी, या फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा, इस मार्ग पर चलूँगा उस मार्ग पर जाऊँगा तो वहाँ मुझे उत्तर मिलेगा। तो साधना शुरू करने के लिए भी एक श्रद्धा होनी चाहिए। ये जो है इसको अंधश्रद्धा नहीं समझना चाहिए कि जो गुरु ने कह दिया वो मानना जो शिष्य का जो है गुण है, नहीं, वो बेवकूफ़ी है। श्रद्धा वो होती है जिसमें कि आपने अपने अंदर जो अज्ञान है उसको नष्ट करने का निश्चय कर लिया है, अब आप प्रयास कर रहे हैं, वो श्रद्धा है। एक दूसरे तरह की भी श्रद्धा होती है जो है जीवंत श्रद्धा। यदि गुरु आपको 10 चीज़ें बताता है, 10 पाठ पढ़ाता है, 10 शिक्षाएं आपको देता है, उसमें से 8 सत्य निकलती है आपके मानदंड के अनुसार, आपके अनुभव के अनुसार, तो आपके मन में एक विश्वास आ जाता है उस गुरु के लिए या उस पुस्तक के लिए कि बाकी जो 2 है, 10 में से 8 तो आपके अनुभव हो गए लेकिन बाकी जो 2 है वो भी सत्य निकलेंगी। तो ये है जीवंत श्रद्धा, और आप उसकी ओर फिर काम करते हैं, आप वो अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। यदि ये भी नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रगति नहीं होगी। तो प्रगति के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा का मतलब अंधश्रद्धा नहीं है, जीवंत श्रद्धा है कि आप प्रयास करें, आप प्रयोग करें, वो जो बातें आपको बताई गई हैं उन पर प्रयोग करें, वो सत्य निकलती है या नहीं देखें, और फिर यदि वो सत्य निकलती है तो अगली बात पर प्रयोग करें, यदि नहीं निकलती है तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ना मतलब आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको या तो अज्ञान मिलेगा या तरह तरह धारणाएँ मिलेंगी, या किताबी ज्ञान मिलेगा, परोक्ष ज्ञान मिलेगा जो कि गुरु को भी नहीं मालूम, वो कहीं से पढ़ के बता रहा है आपको, तो वहाँ आपकी प्रगति रुक जाएगी। तो जीवंत श्रद्धा आवश्यक है। फिर समाधान, आपको जब ज्ञान मिलना शुरू होता है तो तरह तरह की नई वासनाएं मन में आती हैं, तो जैसे सिद्धियां मिलती हैं लोगों को तो उनको उपयोग करने का उनमें लालच आ जाता है। तो यदि समाधान नहीं है तो आप उसमें फंस जाएंगे, वहाँ पे प्रगति रुक जाती है। तो मैं आपको एक ही लाइन में बता रहा हूँ अभी, तो बाद में हो सकता है हम ज़्यादा विस्तार में इन चीज़ों की पर बात करें। तो यदि आपको समाधान नहीं है तो आप दूसरी भी चीज़ों में, जैसे कि रुपए पैसे, धन दौलत या रिश्ते, या फिर दूसरों पे शासन करने की इच्छा, या तरह तरह की इच्छाओं में फंसे रहेंगे आप, समाधान नहीं होगा। उपरति, आपका मन कहेगा कि आपको कुछ नहीं चाहिए, अब बहुत कुछ है मेरे पास, हर चीज़ है, मेरा परिवार सुखी परिवार है और मैं भी सुखी हूँ, लेकिन जब आप बाहर देखेंगे, आपके दरवाजे के बाहर, तो आपको वहाँ पर पूरा एक तरह का दुर्गति हो चुकी है हमारे सारे समाज की और देश की, तो उससे आपको दुख होगा, आपको लगेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए यहाँ पर, बाकी लोगों को ठीक करने की आपकी इच्छा होगी या कुछ दूसरों के लिए करने की इच्छा होगी, तो उपरति उस इच्छा का नाश है। यानी कि यदि आप उस फेर में पड़ गए तो आपका जीवन उसी में नष्ट हो जाएगा, आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत लोग हैं कि खुद समझते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सारा ज्ञान है, अभी मुझे दूसरों को ठीक करना है, दूसरे लोग अज्ञानी हैं, तो ये एक तरह की बेवकूफ़ी है, ये मूर्खता है, ये नहीं करना चाहिए। संसार का जो वातावरण है उससे आप दूर रहना चाहिए, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि यदि आपको कोई बताता है कि संसार स्वप्न है या मिथ्या है तो फिर उसको ठीक करके कोई उपयोग नहीं है। तो उपरति जो है वो आपको इस गड्ढे में गिरने से बचाएगी। तो सारा का सारा आपका ध्यान ज्ञान की ओर ही होना चाहिए, नहीं तो आपका समय नष्ट होगा दूसरों के चक्कर में। तो चाहे वो अच्छे कार्य क्यों ना हो, आपको बचना चाहिए वो करने से। तितिक्षा, ये बहुत ज़रूरी है, इसका अर्थ है सहन शक्ति। आपको ज्ञान मार्ग पर भी बाधाएं आती है तो बहुत बल इसमें लगता है, इसमें आगे जाने के लिए ताकत लगती है, तो मजबूत मनस बुद्धि चाहिए इसके लिए। तो यदि आप में वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है इन बाधाओं को दूर करने की, सहने की, जो भी बाधाएं आएंगी इसमें, तो मुश्किल है फिर आगे बढ़ना, प्रगति रुक जाती है। तो तितिक्षा वो गुण है जो कि आपको बड़ी शक्ति देता है आगे चलते जाने की। बहुत बार ऐसा होगा ज्ञान मार्ग पर कि आप हार मान लेंगे एक तरह की, अब मुझसे नहीं होगा ये। तो ये चीज़ जो है ज्ञान मार्ग के लिए ठीक नहीं है, हार मानना। आप में ये होना चाहिए, धैर्य और थोड़ी सी दृढ़ होने, दृढ़ शक्ति होनी चाहिए।
आप सुन रहे थे बोधि वार्ता तरुण प्रधान के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस श्रृंखला के अगले भाग में। नमस्कार।